इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया है, इतनी देर से हिचकियां आ रही हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नंदिनी ने कहा, लगता है तुझे कोई बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। इप्सिता ने आइसक्रीम रोल करते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो यार, हम बहुत देर से परेशान हैं, ये हिचकियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, हम क्या करें। नंदिनी ने समझाते हुए कहा, यार मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि हिचकी तभी आती है जब कोई याद करता है। थोड़ा सोचते हुए इप्सिता बोली, मुझे तो इतनी देर से हिचकी आ रही है, मुझे कौन याद कर रहा है, कहीं तू मुझे तो नहीं मिस कर रही। नंदिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मैं तुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही, और वैसे मैं आज दोपहर तक तेरे साथ थी, मैं भला तुझे मिस क्यों करूंगी। इप्सिता चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। तभी नंदिनी बोली, इशु कहीं तुझे कुंवर सा तो नहीं याद कर रहे। इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु वो मुझे क्यों याद करेंगे भला। नंदिनी ने कहा, आज तूने उन्हें सरप्राइज दिया था ना, इसलिए हो सकता है वो तेरे सरप्राइज को सोचकर तुझे याद कर रहे हों। इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही अपनी हिचकी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तू फोन रख और रेस्ट कर, हम तुझे कल मिलते हैं। इतना कहकर इप्सिता ने कॉल काट दिया। इप्सिता ने फोन साइड में रखकर बेड पर आराम से बैठी और नंदिनी की बात याद करते हुए बोली, क्या सच में ऐसा होता है, जब हमें कोई याद करता है तभी हिचकी आती है। उसने मन में कहा, और वैसे मिस्टर अभिमन्यु मुझे क्यों याद करेंगे, वैसे हो भी सकता है क्योंकि आज हमने उन्हें जो थप्पड़ मारा था वो काफी तेज मारा था, तो हो सकता है वो उस थप्पड़ को ही सोचकर हमें याद कर रहे हों। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगी। तभी इप्सिता ने ध्यान दिया कि उसकी हिचकियां हुक गई थी। हैरत से बोली, क्या सच में ऐसा होता है, मिस्टर अभिमन्यु मुझे याद कर रहे थे, या फिर ये सब कुछ बस कहने की बातें हैं। इतने में उसे फिर से एक हिचकी आई। इप्सिता ने साइड में रखी बोतल उठाकर पानी पिया और अपनी गर्दन पर हाथ रखा। इसके बाद उसे हिचकी नहीं आई। अब इप्सिता को नींद आ रही थी, वो आराम से बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। इप्सिता के लिए आज का दिन काफी लंबा था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो गई। अगली सुबह इप्सिता उठी और फ्रेश होने के बाद कपड़े बदल लिए। उसने मोबाइल फोन उठाकर चेक किया, उसमें नंदिनी के गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक और मैसेज था, इशु तुम मुझे लंच के टाइम लेने आना, हम पहले एक साथ शॉपिंग पर चलेंगे, उसके बाद मैं तुझे यहाँ की बेस्ट पानीपुरी खिलाऊंगी। इप्सिता बहुत खुश हुई और सोचने लगी, लेकिन अगर मैं संजय के साथ गई तो नंदिनी के साथ तो कहीं घूम ही नहीं पाऊंगी, एक काम करती हूँ मैं नंदिनी को लेने अकेले चली जाती हूँ। इतना कहकर इप्सिता जल्दी से तैयार हुई और ब्रेकफास्ट करने के बाद सुहासिनी से पूछा, मम्मी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सुहासिनी जी ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, हाँ बेटा बोलिए, क्या बात करनी है आपको। इप्सिता ने झिझकते हुए पूछा, मम्मी वो एक्चुअली नंदिनी अपनी मौसी के घर गई थी और अब वो मुझसे बोल रही है कि हम उसे दोपहर तक पिकअप कर लें, तो क्या हम उसे लेने चले। सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, अगर वो आपको बुला रही है तो आप चली जाइए, हम संजय से बोल देंगे वो आपको लेकर चले जाएंगे। इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी संजय अंकल को क्यों परेशान करना, और वैसे भी वो यही पास में ही है, तो हम अकेले ही चली जाएंगी। सुहासिनी जी ने मनाते हुए कहा, नहीं बेटा आप अकेले मत जाइए, अब आप इस घर के साथ साथ राजवंशी राज परिवार की भी इज्जत है, हम आपको इस तरह से अकेले कैसे जाने दें। इप्सिता ने वियर्ड सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मी हम अभी फिलहाल सूर्यवंशी परिवार की ही बेटी हैं और अभी हम राजवंशी राज परिवार की बहू नहीं बनी है, और प्लीज आप हमें बार बार ये याद मत दिलाया करिए, वैसे भी शादी के बाद तो हम पर न जाने कितनी बंदिशें लग जाएंगी, अभी तो हमें आप हमारी मर्जी से जीने दीजिए। सुहासिनी जी ने इप्सिता को इतना फ्रस्ट्रेटेड देखकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा आप जाइए, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अपनी फ्रेंड को लेने जाना है तो ठीक है चली जाइए, पर आराम से जाइएगा। सुहासिनी जी की बात सुनकर इप्सिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने जल्दी से उठकर अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मम्मी। इप्सिता रूम में गई और नंदिनी को कॉल करते हुए कहा, हेलो नंदिनी रेडी हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। नंदिनी ने कहा, ठीक है जब तक तुम आओगी तब तक मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी। इप्सिता ने अपना पर्स मोबाइल और कार की चाबी उठाई और तुरंत घर से बाहर निकल गई। इप्सिता को अच्छी तरह ड्राइव करनी आती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे ज्यादा मौका नहीं मिला था, इसीलिए आज इतने दिनों बाद जैसे ही वो कार लेकर घर से बाहर निकली, धीरे धीरे उसने कार चलानी शुरू की। वो इस तरह अकेले घर से निकलकर बहुत खुश हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी फ्रीडम वापस मिल गई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम मम्मी से इस तरह थोड़ी रूढ़ होकर बात नहीं करती तो शायद वो हमें कभी भी अकेले नहीं आने देती। खैर कोई बात नहीं, अब तो नंदिनी के साथ हम आराम से जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे। इप्सिता खुश थी और आराम से कार ड्राइव कर रही थी, लेकिन जैसे ही कार सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकली और रोड पर इतना ट्रैफिक देखा, इप्सिता थोड़ी सी पैनिक हो गई। इप्सिता चौराहे से रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी अचानक से एक कार उसके सामने आ गई। इप्सिता ने जल्दी से अपनी कार मोड़ी और उसे वहाँ से निकाल लिया। इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड बच गई, वरना आज तो हमने कार को ठोक ही दिया था। इतना सोची रही थी कि तभी इप्सिता की स्टीयरिंग से उसकी पकड़ ढीली हो गई और गाड़ी इधर उधर भागने लगी। इप्सिता ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और कार के बैलेंस को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उससे संभाल नहीं पाई और उसने सामने से आ रही एक ऑडी कार को ठोक दिया।
ये एक्सीडेंट होते ही इप्सिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओ गॉड, ये हमने क्या किया? हमसे ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अगर मम्मी को ये बात पता चली वो तो हमें पता नहीं कौन सी सजा देंगी। इप्सिता की कार उस ऑडी कार के मुकाबले काफी मजबूत थी। इप्सिता की कार को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े से इधर उधर डेंट आए थे। वहीं इप्सिता के सामने जो ऑडी कार थी वो काफी खराब हो गई थी। उसका बोनट और हेडलाइट पूरी तरह से टूट गया था। इसे देखकर उस कार के मालिक ने इप्सिता की कार के पास आकर उसके शीशे पर नॉक करते हुए कहा, हेलो मैडम, बाहर निकलो, तुमने मेरी कार की तो धज्जियां उड़ा दी है। जब कार ड्राइव करनी नहीं आती तो ड्राइव करती क्यों हो? इप्सिता उस आदमी को देखकर काफी घबरा गई और उसने अपनी कार का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। इप्सिता वहां से कार पीछे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी कार के पीछे दूसरी कार थी और वो आदमी भी वहीं इप्सिता की कार का गेट पकड़कर खड़ा था और इप्सिता पर चिल्लाता ही जा रहा था। इप्सिता को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ओ गॉड, मैं अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगी? मॉम को कॉल करूं क्या? नहीं, अगर मॉम को कॉल किया तो वो तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। फिर संजय अंकल को यहाँ बुलाऊं? अगर मैं संजय अंकल को बुलाया तो वो भी मुझे डांटेंगे। पहले तो मैंने उन्हें ड्राइव करने के लिए नहीं बुलाया और जब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तब मैं उन्हें बुला रही हूँ। इप्सिता का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और बाहर खड़े आदमी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हेलो मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्रमशः